अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी पड़ने से आस्तिक की नींद खुलती है, लेकिन जब वो नींद से जाग रहा होता है तब उसे अपने सीने पर एक भार सा महसूस होता है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपने सीने पर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो गई। अरुणिमा उसके सीने पर किसी छोटे बच्चों की तरह अपने चेहरे को रगड़ते हुए सो रही थी। अरुणिमा का वो मासूम सा चेहरा देखकर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अरुणिमा के उस प्यारे से चेहरे को निहार रहा था। अरुणिमा के बालों की एक लट बार बार उसके गालों पर जाकर उसकी नींद में खलल डाल रही थी। आस्तिक ने धीरे से अपनी उंगलियों में उन बालों को उलझाते हुए उसके कान के पीछे कर दिया और वो उसके उस मासूम से चेहरे को निहार रहा था। कल रात की बातें आस्तिक के जहन में अचानक से आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि किस तरीके से अरुणिमा मरवो एक साथ उसकी माँ के कमरे में थे। अरुणिमा ने सच ही कहा था, आस्तिक उसके सवालों से बचने के लिए ही वहाँ गया हुआ था और उसने जानबूझकर इतनी शराब पी रखी थी ताकि उसे अरुणिमा के सवालों के जवाब ना देने पड़े। उसे लगा अरुणिमा इस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे तलाक मांगेगी और उससे अलग होने के लिए कहेगी, और अपने वादे के मुताबिक आस्तिक कल के दिन किसी की भी एक इच्छा पूरी ज़रूर करता है, लेकिन वो अरुणिमा को जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उससे बच रहा था। लेकिन अरुणिमा ने आस्तिक से तलाक नहीं मांगा और ना ही उसे अलग होने की बात कही, लेकिन आस्तिक को पूरी बात याद नहीं आ रही थी क्योंकि नशा उसके ऊपर बुरी तरीके से हावी था। जो बात उसे याद आई थी वो बस इतनी थी कि अरुणिमा उससे सवाल कर रही थी और आस्तिक को लगा वो उससे तलाक मांगेगी। इसके आगे का कोई भी वाक्य आस्तिक को याद ही नहीं आ रहा था। वो हैरानी से अरुणिमा को देख कर कहता है, कहीं मैंने इसे कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो मुझे इससे नहीं कहना चाहिए था? क्या मुसीबत है यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने इसे क्या कहा है। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं बता दी है जो इसके मतलब की नहीं है? कहीं मैंने उसे अपने अतीत के बारे में तो कुछ नहीं बता दिया है? नशे में मैं कुछ भी कह जाता हूँ, इसीलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं नशे में रहूँ तो मेरे आसपास कोई ना रहे। लेकिन ऐसे में अगर अरुणिमा को मैंने कुछ कह दिया होगा तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरे बीते कल के बारे में जानकर हर किसी को मेरे लिए दया आ जाएगी और मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता अरुणिमा मुझ पर कभी दया दिखाए। मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि मुझे किसी के रहमोकरम की ज़रूरत नहीं है और अरुणिमा की तो बिल्कुल भी नहीं। आस्तिक धीरे से उठता है और अरुणिमा का सर आराम से तकिया पर रख देता है और वो इतने आराम से ये सब कर रहा था जिससे अरुणिमा की नींद में डिस्टर्बेंस ना हो। जब आस्तिक अरुणिमा को बिस्तर पर पलट रहा था तब अरुणिमा अपनी नींद में अलसाई हुई आवाज़ में किसी बच्चे की तरह कहती है, सोने दो, नीनी नहीं आ रही है। अरुणिमा की मुंह से इस तरीके से बच्चों वाली आवाज़ सुनकर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आस्तिक देखता है कि उसका एक हाथ अरुणिमा के सर के पीछे है। वो धीरे से अरुणिमा के सर को उठाता है और अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन अचानक से अरुणिमा की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक को अपने इतना करीब पाकर अरुणिमा अचानक से घबरा जाती है। उसे लगता है आस्तिक फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अरुणिमा को उठता देख आस्तिक भी उठ जाता है। अरुणिमा उठकर बैठ जाती है और थोड़ा पीछे खिसक जाती है। वो डरते हुए आस्तिक को देख रही थी तो आस्तिक कहता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारी नींद खराब नहीं की है, मैं बस अपना हाथ निकाल रहा था और तुम उठ गई। लेकिन अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, आपने कल मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे बात करेंगे, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया। आपने तो इतनी शराब पी ली थी कि आपसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, ये आपने सही नहीं किया राजा साहब। आस्तिक हैरानी से सिर्फ अरुणिमा की बातें सुनता जा रहा था। वो जल्दी से बेड से खड़ा होता है और अरुणिमा को देखकर कहता है, कल रात मैंने तुमसे कुछ कहा था क्या? आस्तिक देख पा रहा था कि अरुणिमा उसके इतने करीब होने से डर रही है और इसीलिए वो जल्दी से उससे दूर हो जाता है। आस्तिक हैरान रह गया था, क्या ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले उसके सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी और अब उसे देखकर ऐसे डर रही है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया है? अरुणिमा ने डरते हुए आस्तिक को देखकर कहा, आपने मुझसे कहा कि आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं और मैं आपके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आती हूँ। अरुणिमा की बातें सुनकर आस्तिक ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन खुद को दो चार गालियां दे दी। यही तो वो बातें थी जो वो कभी किसी के सामने नहीं कहना चाहता था, लेकिन कल रात उसने नशे की हालत में अरुणिमा के सामने सारी उल्टी कर दी। अरुणिमा जब आस्तिक को ऐसे देखती है तो धीरे से उसके पास आती है। वो धीरे से आस्तिक का हाथ पकड़ती है और कहती है, आप फिक्र मत कीजिए राजा साहब, मैं आपके साथ हूँ। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस शादी को सफल बनाने की, लेकिन आपकी मदद के बिना मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हम दोनों को मिलकर इस शादी को कामयाब। अरुणिमा अपने कहे शब्द पूरे भी नहीं कर पाई कि आस्तिक ने अपना हाथ झटक कर उसे गुस्से में देखने लगा। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते रह जाती है, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आस्तिक ने अपने मन में खुद को कोसते हुए कहा, तो मैं सही था कि ये लड़की मुझ पर दया दिखा रही है, लेकिन मुझे इसकी दया की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम आस्तिक रायचंद है और ये नाम मैंने खुद अपने दम पर बनाया है, किसी के दया पर नहीं। आस्तिक अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ कर लेता है और अरुणिमा से कहता है, दो इंसानों की शादी तब सफल होती है जब दो इंसान बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मेरे साथ की शादी को सफल बनाने का अपना सपना यहीं छोड़ दो। आस्तिक दो कदम आगे बढ़ता है और फिर रुककर पलटकर अरुणिमा को देखकर कहता है, और हाँ, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है।